स्वाध्याय सिद्धम शुद्धम पणमिया जिनिंद नेमि चंद मकालंकम गुणरयण भूषण दयाम जीवस परोणम मोक्षम। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं में अंतिम प्ररूपणा उपयोग अधिकार के रूप में प्रारंभ हो रही है। उपयोग में आपने जाना साकारोपयोग और अनाकारोपयोग, यानी ज्ञानोपयोग साकारोपयोग है, अनाकारोपयोग दर्शनोपयोग है। संसारी जीवों के पहले दर्शनोपयोग होता है, पुनः ज्ञानोपयोग होता है और केवली भगवान के दोनों ही उपयोग एक साथ होते हैं। देखना और जानना एक साथ दोनों उपयोगों का काम होता है, इसीलिए उनको कहा जाता है कि जानीते युपत प्रतिक्षण मतः सर्वज्ञ इत्युच्यते। सर्वज्ञ की परिभाषा यही है, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, जो संपूर्ण द्रव्यों की और संपूर्ण पदार्थों की त्रैकालिक पर्यायों को एक साथ जान लेते हैं वे कहलाते हैं सर्वज्ञ। तो युगपत प्रतिक्षण मतः, ये एक साथ प्रतिक्षण की एक एक पर्यायों को जान लेते हैं, इसीलिए उनका सर्वज्ञ ये संज्ञा सर्वज्ञ विशेषण सार्थक हो जाता है। ऐसे सिद्ध भगवान के लिए भी आपको बताया गया कि उनकी सिद्ध गति होती है, ज्ञान दर्शन सम्यक और अनाहारक को छोड़ करके बाकी नौमार्गणा नहीं पाई जाती हैं। तो अब आगे बताते हैं, बिल्कुल अंत में हम आ गए हैं उपसंहार में, गाथा नंबर 172 के अंत में 20 वेदों को जानने के उपाय को बताते हुए उसका फल दिखलाते हैं। निखे वे ए अथे नय प्रमाणे निरुत्ति अणि योगे मग्गैवी संभेयम् सो जानय्यप्प स भावम् सामूहिक गाथा पढ़िएगा। निखेवे ए अथे नय प्रमाणे निरुत्ति अणि योगे मग्गैवी संभेयम् सो जानय्यप्प स भावम् निक्षेपे एकार्थे नय प्रमाणे निरुक्त्यनियोगयोः मार्गयति विंशं भेदम् स जानाति आत्मसद्भावम्। कहा है कि जो जो जीव जो गुणस्थान आदि उक्त 20 भेद यानी 20 प्ररूपणाएं कही गई हैं, उन 20 भेदों को निक्षेपे, निक्षेप में एकार्थे, एक अर्थ के द्वारा नए प्रमाण निरुक्ति अनुयोग आदि के द्वारा जान लेते हैं, वही आत्म सद्भाव को समझते हैं। ऐसा समझना यानी कि जो 20 प्ररूपणाएं कही गई हैं उनका मतलब ही यही है कि इनको जानने के बाद प्राणी अपनी आत्मा के अस्तित्व को, अपनी आत्मा के सद्भाव को जान ले। तो इनके बारे में कहा कि निक्षेप, इकार, नय, प्रमाण, निरुक्ति और अनुयोग, इनके द्वारा जो 20 प्ररूपणाओं को जान लेता है तो वो समझो कि आत्मा को जान गया। देखो इसी भाव को लेकर के गोमठ सार जीव कांड ग्रंथ की रचना की। केवल मात्र हम किसी चीज को जान लें ये पुस्तक है, इससे कल्याण नहीं होता। जिस चीज को हमने जाना है उसके सार को समझें और उसके रहस्य को जानकर उसे कैसे आत्मसात किया जाता है, ये जब अंदर तक बात उतर जाती है तब उसको पढ़ने की सार्थकता होती है। इसलिए सार्थकता को बतलाने के लिए आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा कि अब निक्षेप क्या है, यानी जिनके द्वारा इन 20 प्ररूपणाओं को जाना जाता है, निक्षेप की बात कहें, निक्षेवे, निक्षेप के द्वारा जानते हैं, तो निक्षेप है कि जिनके द्वारा पदार्थों का सम्यक प्रकार से समीचीन ज्ञान होता है, ऐसे उपाय को कहते हैं निक्षेप। और निक्षेप के चार भेद होते हैं, तत्वार्थ सूत्र में भी पढ़ाते हैं, नाम स्थापना, द्रव्य भाव, तत्संन्यासः। सम्यक दर्शन के प्रकरण में भी इनको कहा कि नाम स्थापना, द्रव्य और भाव, इनके द्वारा जीवादिक पदार्थों का, रत्नत्रय का व्यवहार किया जाता है, समीचीन जानकारी की जाती है। इसलिए नाम स्थापना, द्रव्य और भाव, ये चार निक्षेप के भाग भेद बताए हैं। तो कह रहे हैं, जैसे किसी अर्थ विशेष की अपेक्षा ना करके किसी जीव की ये जीव संज्ञा रख दी गई। नाम किसी को कह देते हैं आत्मा या जीव, तो जीव शब्द, ये जो संज्ञा बता दी, ये जीव संज्ञा रख दी, तो वे जीव का नाम निक्षेप हो गया। यानी जिसके अंदर जीवत्व तो है, प्रत्येक प्राणी जीव है, लेकिन किसी का नाम रख दिया, कोई भी नाम रख दिया, महावीर नाम रख दिया, चाहे उसके अंदर गुण है कि नहीं, उसको पहचानने के लिए, उसका व्यवहार करने के लिए प्रत्येक प्राणी का, जो बालक बालिका के रूप में घर में जन्म लेते हैं, उनका कोई ना कोई नाम निर्धारित कर दिया जाता है। और जब उस नाम से उसको पुकारा जाता है, तो तुरंत उसकी ओर वो आकर्षित होता है। यानी अपने नाम को पुकारे जाने पर वो बच्चा जान जाता है कि मुझे पुला रही है, जो भी नाम उसका निर्धारित किया जाता है। ऐसे किसी का जीव, ये नाम रख दिया गया, ये हो गया नाम निक्षेप। आप कहते हैं किसी लकड़ी की चित्र या मूर्ति में, या किसी मिट्टी की मूर्ति में, ये वही है, संकल्प रूप से स्थापना कर दी, चंदा प्रभु की मूर्ति है, ये क्षेत्रपाल बाबा हैं, ये महावीर भगवान की मूर्ति है, तो ये स्थापना निक्षेप हो गया। यानी आगे आगे बढ़ करके उन चीजों का व्यवहार या ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो ये स्थापना निक्षेप हुआ। और स्थापना निक्षेप में, स्थापना के अंदर स्थाप्यमान पदार्थ की तरह ही उसका आदर अनुग्रह होता है। तो भविष्यत या भूत को वर्तमान कहना, ये द्रव्य निक्षेप। देखो, स्थापना निक्षेप, अगर आदिनाथ भगवान की मूर्ति कह दी, यानी कि फिर उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े होना, उनके दर्शन करना, साक्षात भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव हैं, ऐसा मन के अंदर विनय भाव प्रकट हो जाना, ये तो हो गया स्थापना निक्षेप। अब द्रव्य निक्षेप में कहा, जैसे कि कोई मनुष्य मर करके देव होने वाला है, या देव मर करके मनुष्य होने वाला है, तो उसको मनुष्य कह देना, या देव पर्याय में मनुष्य कह देना, या फिर उस विषय का वहां पर निक्षेप कर देना, ये भाव निक्षेप है कि अब भाई आप तो बिल्कुल भगवान बने। अब कोई दीक्षार्थी है तो उसको कह देंगे आप तो है, यानी कि उस भाव को, उस श्रद्धा से उनको देखना, तो ये हो जाता है भाव निक्षेप। अब इसके बाद में आया एकार्थ। एकार्थ का मतलब है प्राणभूत असाधारण लक्षण को एकार्थ कहते हैं। जैसे जीव का लक्षण जब जीव में दिखता है कि 10 प्राणों से जीता था, जी रहा है, जिएगा, तो उसको जीव कह देते हैं कि उसका लक्षण दिख रहा है। किसी चौकी को जीव नहीं कहते, उसके अंदर पुद्गल के गुण है तो उसे पुद्गल कहते हैं। तो यही उस जीव का या पुद्गल का एकार्थ है। एक ही अर्थ जिसके अंदर समाविष्ट है, जीव है तो है, वह जो है पुद्गल नहीं हो सकता। इसलिए जीव को जीव रूप से जानना या देखना, यही जीव का एक अर्थ है। अथवा एक ही अर्थ के वाचक भिन्न भिन्न शब्दों को भी एकार्थ कह देते हैं। जैसे कि प्राणी भूत जीव और सत्व, ये शब्द भिन्न भिन्न अर्थों की अपेक्षा रखते हुए भी एक जीव के आत्मा, जीव, प्राणी, चेतना, चैतन्य, ये सब चीजें एकार्थवाचक हैं। तो एकार्थवाचक का मतलब है एक ही अर्थ के, एक ही शब्द के अनेक शब्द होते हैं, सिनोनिम वर्ड्स, यानी पर्यायवाची शब्द, उनको एक ही अर्थ के वाचक होने के कारण उसी शब्द से कहते हैं। तो ये एक अर्थ के वाचक होते हैं। और नय को कहा है वस्तु के अंश मात्र ग्रहण करने को नय कहते हैं। जैसे जीव शब्द के द्वारा आत्मा की जीवत्व शक्ति को कहना, एक शक्ति के द्वारा समस्त वस्तु के ग्रहण को प्रमाण कह देते हैं। तो नय और प्रमाण, इन दोनों के प्रमाण नयी अधिगमा, आप पढ़ते हैं सूत्र को, प्रमाण और नयों के द्वारा ज्ञान होता है, वस्तु का ज्ञान होता है। तो एक अंश का ज्ञान करना नय है और संपूर्ण पदार्थ का ज्ञान हो जाना ये प्रमाण है। तो इस प्रकार से प्रमाण को कहा, जैसे जीव शब्द के द्वारा संपूर्ण आत्मा का ग्रहण हो जाना, चाहे वो जीव शब्द कहा, चाहे वो संसारी जीव है, चाहे मुक्त जीव है, सबका ग्रहण हो जाना, चारों गतियों के जीव को ग्रहण कर लेना ये प्रमाण है। जिस धातु और प्रत्यय के द्वारा जिस अर्थ में जो शब्द निष्पन्न हुआ बना, उसको उसी प्रकार से देखने को निरुक्ति कहते हैं। जीवित, जीवती, जीविष्यति, अजीवत्वा, सो जीवा, किसी किसी शब्द का निरुक्ति अर्थ कह देते हैं। गच्छति थी गौ, तो जो चलती है उसे गाय, ऐसे मतलब कह देते हैं। तो जीव को का निरुक्ति अर्थ बताया कि जो जी रहा था, जी रहा है और जिएगा आगे भी, तो ये निरुक्ति अर्थ उसका बता दिया। अब जीवादिक पदार्थों को जानने के उपाय विशेष को अनुयोग कहते हैं। सारे षटखंडागम की धवला टीका के अंदर 24 अनुयोग द्वार, इन सब से एक एक अनुयोग द्वारों के द्वारा जो उपाय बताए हैं जीव द्रव्य के या पदार्थों के जानने के कारण, उनको उपाय विशेष को अनुयोग कह देते हैं। तो उस अनुयोग के प्रारंभ में 6 भेद किए हैं, निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, स्थिति, विधानता, आप पढ़ते हैं ना तत्व सूत्र में। इस प्रकार से इनके द्वारा जो 20 प्ररूपणाएं हैं उनको जो जान लेता है तो स आत्म सद्भावम जानाती, वह समझो अपने आत्मा के संपूर्ण स्वरूप को जान गया, माने आत्म स्वरूप में लीन होने की पद्धति को जान गया कि अशुद्ध जीव है संसार के अंदर, और जब मुक्त हो जाता है तो कर्म और नो कर्म के संपूर्ण संयोग से उसका संबंध छूट जाता है, यानी शुद्धात्म तत्व को अच्छी तरह से जान लेता है, ये बात बताई है। अब अंतिम श्लोक है, अजज सेण गुण गण समूह संधा संधारी अजिय सेण गुरु,
समूह संधारी अजिय सेण गुरु,
भुवन गुरु जस गुरु,
गुरु
सोराओ गुम तो जयतु।
जयतु।
सामूहिक हिजंती उपसंहार की गाथा को पढ़िएगा, अजज सेण गुण गण समूह संधारी अजिय सेण गुरु, भुवन गुरु जस गुरु, सोराओ गो
जयतु।
देखो गुरु शिष्य का कितना बड़ा वात्सल्य, यानी जब शिष्य ने गुरु को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया तो गुरु भी अपने शिष्य को किस प्रकार से बढ़ाते हैं और किस प्रकार से आशीर्वाद देते हुए हमेशा उसकी समृद्धि वृद्धि की मंगल कामना करते हैं। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती इस ग्रंथ के रचयिता हैं, लेकिन उन्होंने गोमट नाम के शिष्य, चामुंड राय नाम के शिष्य को लक्ष्य करके जिस ग्रंथ को बनाया, उन्होंने कितना ईमानदारी का और अपनी उदारता का परिचय दिया। उन्होंने कहा, अजज सेन गुणगण, श्री आर्य सेन गुरुवर जो थे, आचार्य देव थे, उनके अनेक गुण गण समूह संधारी, उनके गुणों को जिन्होंने अपने अंदर अवतीर्ण किया, धारण किया, ऐसे अजित सेन नाम के गुरु हुए। माने आर्य सेन गुरु महान गुणों के निधान थे, उनके गुणों के खजाने को लेकर के जिन्होंने अपने अंदर अनेक गुणों को धारण किया, ऐसे अजित सेन गुरु जो भुवन गुरु माने कि तीनों लोकों के गुरु, यानी दिगंबर गुरु तीनों लोकों के गुरु होते हैं। ये 28 मूल गुण, 36 मूल गुण आदि ये किसी की बपौती नहीं होते, ये जिन मुद्रा को धारण करने वाले प्रत्येक निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु के अंदर सार्थक होते हैं। इसलिए कितना सुंदर शब्द दिया है, भुवन गुरु यानी वे अजित सेन नाम के गुरुदेव तीनों लोकों के गुरु थे। ऐसे अजित सेन आचार्य जिनके गुरु हैं, ऐसे चामुंड राय जिनका नाम गोमट पड़ा, और उन्हीं उनने जो भगवान बाहुबली की प्रतिमा बनाई इसलिए उनका नाम गोमटेश्वर। बाहुबली भगवान को क्या कहते हैं? गोमटेश्वर माने गोमट के ईश्वर, यानी ज्ञानमती माताई ने अगर भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा बनाई तो ज्ञानमती माताई के ईश्वर हो गए, ज्ञानमती माताई के फेवरेट भगवान हो गए। ऐसे ही ये चामुंड राय के फेवरेट भगवान कौन थे? बाहुबली भगवान। उन्होंने अपनी माता की भक्ति में प्रेरित होकर मातृभक्ति का उदाहरण दिया था, उनका नाम था गोमट। उनकी माता के नाम से भगवान प्रसिद्ध नहीं हुए बल्कि उनके खुद के नाम से गोमटेश्वर बाहुबली भगवान प्रसिद्ध हो गए। ऐसे उन गोमट जिनका पहला नाम चामुंड राय था, जिनका दूसरा नाम गोमट था, ऐसे गोमट शिष्य के आग्रह पर शिष्य के भावना को लेकर के उन्होंने कहा था, षट्खंडागम ग्रंथ का अर्थ भगवान हम कैसे समझेंगे? तो उनकी भावना समझ करके, उनकी धारणा शक्ति और उनकी ज्ञान की जिज्ञासा को देखते हुए नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमट सार जीव कांड की रचना की, और अंत में उस गोमट राजा को अपने शिष्य के रूप में या अपने भक्त के रूप में स्वीकार करके इस ग्रंथ के अंत में उनको आशीर्वाद देते हैं, माने सो राओ गोमटो जयतु, ऐसे राजा गोमट राय जयशील होवे। जयशील होवे माने वे अपने नाम को सार्थक करें और हमेशा ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को विजयशील बनाते रहें। ये गुरुदेव का उनके प्रति महान आदर भाव वात्सल्य भाव रहा है, क्योंकि वे उनसे गोमट से या चामुंड राय से प्रभावित नहीं थे बल्कि उन्होंने गुण को लिया कि इसके निमित्त से मैंने जीव कांड नाम के ग्रंथ को रचा, मेरा ध्यान शुभोपयोग में आया, मैंने ज्ञान अभीक्षण ज्ञानोपयोग रूप अपने ज्ञान को बनाया। तो अंत में उन गोमट नाम के राजा को चामुंड राय को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सो राओ गोमटो जयतु, ऐसे गोमट चामुंड राय राजा जयवंत रहे। इस प्रकार से इस गोमट सार ग्रंथ का स्वाध्याय परिपूर्ण होता है। इति गोमट सारस्य जीव कांडम समाप्तम, यानी बहुत बड़ा गोमट सार जीव कांड है, 750 लगभग गाथाएं उसके अंदर, लेकिन उनमें से सभी साधारण शिष्यों को समझाने के लिए उसका सार बताने के लिए पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता ने हम सब पर उपकार किया, और उसमें से 173 गाथाएं बिल्कुल खास खास गाथाएं छांट करके और गोमट सार जीव कांड सार नाम के ग्रंथ को दिया। इसका स्वाध्याय हमने आपको कराया, 3 बार आपने पेपर दिया है, परीक्षा दी है, चौथी परीक्षा आपकी 8 तारीख को 8 जून को है। तो ये गोमट सार स्वाध्याय आप सबके लिए खूब ज्ञान की वृद्धि का कारण बने, और अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती साधवाद्मयी सरस्वती माता से और अपनी गुरु माता अग्रणी ज्ञानमती माता से क्षमा प्रार्थी हूँ, और ये स्वाध्याय हमारे आपके सबके जीवन में खूब ज्ञान की वृद्धि का कारण बने, यही मंगल प्रार्थना है पूज्य माता जी से। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक छड़ो सदा दे तो दो, हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रहें, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, ज्ञान मती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो दात सांग मई जिनवाणी।